गीता के छठे अध्याय का 36वें श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो श्लोक है, ये पूरा ही चैप्टर ध्यान योग के नाम से जाना जाता है, और आजकल देखते हैं पार्कों में सब जगह योग चल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उस योग को खत्म कर यहाँ पर बताया कि सही मायने में क्या योग है। इस श्लोक के अंदर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं सुंदर थी। तो मैं सोच रहा था इस आज का जो हमारा श्लोक है, इस पर चर्चा, इसका विषय दे सकते हैं आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, है ना, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। ज़्यादातर प्रॉब्लम है, स्कूल्स में सेमिनार के लिए जाएं, सोसाइटी में जाएं, स्कूल कॉरपोरेट में, एक ही चीज़ पूछता है व्यक्ति, मन को वश में कैसे करें। मन जो है वश में होता नहीं, अर्जुन का नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। तो उसका आज हम थोड़ा सा सीखेंगे, जो मेरे खुद मेरे उदाहरण, मेरे अपने जीवन से जो सीखे हैं श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से, भक्तों के आचरण से, और कुछ ग्रंथों से जो मैंने एकत्रित किया उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है, पहले इसको चर्चा करते हैं और फिर मंगलाचरण करेंगे। असंयत आत्मना योगो दुष प्राप्य इति मे मति, वश्य आत्मना तु यतता शक्यो अवापतुम उपायतो। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, वश्य आत्मना तु यतता शक्यो अवापतुम उपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, वश्य आत्मना तु यतता शक्यो वापतुम उपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, वश्य आत्मना तु यतता शक्यो वापतुम उपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, वश्य आत्मना तु यतता असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, वश्य आत्मना तु यतात शक्योपायतुम पायतः। माताजी, असंयतात्मना योगो दुष्य प्राप्य इति मे मति, वश्य आत्मना तु यतात शक्यो वापतुम उपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, शक्यो आत्मना। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे सब साथ में मिलकर के, जिसका मन उच्च श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य बाय डिवाइन गिव्स श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योग अभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावना भवित में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योग अभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योग अभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भवित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपं कदामयं ददाति शब्दकान्तिकम्। वन्देहां श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्णा पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामे इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप्या इति मे मति वश्य आत्मना तु यताता शक्यो वापतुम उपायतः। जिसका मन उस श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। तो जिसका मन कैसा है, उच्च श्रृंखल, मतलब उस श्रृंखल मतलब यहाँ पर बता रहे हैं असंयत, कंट्रोल में नहीं है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, है नियंत्रण में, माँ बोल रही है चुप हो जा, बच्चा चुप नहीं हो रहा है, बच्चा भाग रहा है, तो उनसे प्रार्थना है कि बच्चे को कंट्रोल करें। बच्चा कंट्रोल होगा तो फिर मन कंट्रोल की विधि हम सीख पाएंगे। तो मन को कंट्रोल करना कैसे है आप बता सकते हैं? संसार में सबसे तेज गति साइंटिस्ट ने ढूंढा, वैज्ञानिकों ने ढूंढा, सबसे तेज गति से क्या चलता है? पहले ढूंढा तो पता चला कि सबसे तेज लाइट चलती है, इसीलिए सूर्य का जो उन्होंने मार्ग बताया, 4.3 लाइट ईयर अवे, मतलब रोशनी की गति सबसे तेज है और सूर्य की जो दूरी है वो रोशनी की गति पर निर्भर करती है। उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि रोशनी से तेज आवाज चलती है ना, क्योंकि जब बिजली कड़कती है तो बिजली की जो कड़कने के बाद में जो रोशनी है वो बाद में आती है, लेकिन उसकी गड़गड़ाहट पहले आ जाती है। इसका मतलब आवाज जो है, साउंड जो है, वो बिजली से भी तेज चलती है। फिर जब साइंटिस्ट ने वैज्ञानिकों ने ढूंढा तो पता चला कि उससे भी तेज अगर कुछ चलता है तो ये देखा जाता है कि बिजली की गड़गड़ाहट होने से पहले, उसकी रोशनी आने से पहले हवाएं चलने लगती हैं। इसका मतलब हवा जो है वो इनसे भी तेज चलती है। लेकिन अभी पिछले ही दो श्लोक में पहले अर्जुन ने एक श्लोक कहा और क्या कहा? चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बालभद्रदम तस्याम निग्रहम मन्यो वायुरेवम सुदुष्करम। हे कृष्ण, मैं अगर एक तीर से चाहूं तो हवा को वश में कर सकता हूं, परंतु चंचलम ही मना कृष्णा, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है। इसका मतलब यहां अर्जुन ने स्थापित कर दिया कि हम हवा को तो वश में नहीं कर सकते हैं, तो मन को वश में करना हमारे लिए मुश्किल है। तो फिर भगवान ने कहा असंशयम महाबाहु दुनिग्रहम चलम। जो मन है इसको वश में करना असंशय है, इसमें कोई संशय नहीं, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तुये वैराग्येन चाग्रीहते। अगर तुम कुछ चीजों का अभ्यास करोगे और कुछ चीजों का वैराग करोगे तो अपने जीवन में पाओगे, तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। तो आज हम ये विधि इस श्लोक के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए हमारे साथ में डॉक्टर भी बैठे हैं, वो बता सकते हैं। हम जाते हैं एम्स में हर मंगलवार को क्लास देने के लिए, तो वहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट अभी जुड़ गए हैं, वो हर मंगलवार आते हैं। बहुत सारे इम्यूनोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं मेरे साथ में आते हैं, प्रवचन में डिस्कशन करते हैं। तो ये चर्चा का विषय था। अभी एक डॉक्टर हैं जो कि अभी लंदन से पढ़ाई करके आए हैं, तो क्योंकि मैंने तो पहले इस फार्मास्यूटिकल पढ़ा था तो मैंने उनको थोड़ा सा उसमें बताया फिलॉसफी, तो बोले अरे आपको तो इसका भी ज्ञान है। तो मैंने उनको एक चीज चर्चा का विषय था कि जैसे दो लोग बीमार हो जाएं, उन दोनों बीमार लोगों में से ये देखना हो कि हमारी दवाई कितनी असरदार है तो क्या करते हैं? एक व्यक्ति को दवाई देते हैं और एक व्यक्ति को दवाई की जगह चीनी की गोली देते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसकी इसके ऊपर कितना असर पड़ा है बिना दवाई खाए हुए। तो पता चलता है 50% तो उसका बुखार उतर गया या दर्द उतर गया उसका सिर्फ चीनी की गोली खाने से। इसका मतलब 50% प्रॉब्लम तो उसके मन की थी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। मन ही फजीत में फंसा देता है और मन ही भगवान राम से मिला देता है। तो इस स्टडी को बोलते हैं प्लेसिबो स्टडीज। प्लेसिबो मतलब नकली दवाई देना, मल्टी विटामिन खिला देना या फिर चीनी की गोली दे देना और कहना हमने आपको दवाई दे दी है, और आके डॉक्टर को बताता है जो मरीज, डॉक्टर साहब पिछले दिनों से कुछ असर पड़ रहा है। डॉक्टर कहता है अरे मैंने कुछ दिया ही नहीं, अभी असर पड़ने लगा। इसका मतलब मन से उसकी आधी बीमारी है। तो ये जो मन है इसको वश में करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन यहां पर कहा गया योगो, योग शब्द के आगे अगर देखेंगे तो लिखा है आत्म साक्षात्कार। क्या लिखा है? अपनी आत्मा को पहचानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा का नित्य धर्म है जीवेरे स्वरूप होए नितेर कृष्ण दास, कृष्ण के मैं दास हूं। इस बात को समझने के लिए आत्म साक्षात्कार कहते हैं। कितने लोगों को आत्म साक्षात्कार हो जाता है? आप में से कितने लोग मानते हैं कि हम आत्मा हैं? कितने लोग मानते? तो भगवान न करे अगर आपको अभी शरीर हम आपका बोले छोड़ दो तो कितने लोग तैयार है? शरीर नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि हम शरीर मानते हैं अपने आप को, ये सब फिलॉसफी सुनते हैं। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हर मंगल हर बुधवार क्लास करके हमें भी कान में बिठा दिया है कि हम आत्मा हैं। तो हम जानने तो लगे हैं पर मानने कभी भी नहीं, बहुत मुश्किल। आत्म साक्षात्कार कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा, तो योग शब्द का मतलब आत्म साक्षात्कार है। लेकिन हम देखते हैं कि प्राय लोग योग कैसे करते हैं, शरीर की कसरत, अष्टांग योगों को करते हैं। पार्कों में जाएं तो क्या करते हैं, शरीर की कसरत, श्वास क्रियाएं करेंगे और कपाल भाति और पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो प्राणायाम करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो योग पद्धति की सिर्फ एक अंग को पकड़कर वो कहते हैं कि हम लोग योग करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार ध्यान धारणा समाधि, ये आठ प्रकार की चीजें जब एक साथ आए तब उसे योग कह सकते हैं, वो भी शारीरिक योग। आत्म साक्षात्कार वाला योग तब भी नहीं है। यम नियम मतलब कुछ चीजें छोड़नी है और कुछ चीजें पकड़नी है। कितने लोग हैं जो पार्क में उल्टे लेट जाते हैं बोरी की तरह आलू की और ऐसे ऐसे घूमते हैं और फिर बाद में उनसे बोला जाए कि आपने क्या प्राप्त किया। ऐसे एक व्यक्ति थे पार्क में, उनसे मैंने पूछा कि आप ये योगा कर रहे हैं, मैं पिछले एक घंटे से देख रहा हूं, मैं वॉक कर रहा हूं, जब भी कर रहा हूं, लेकिन आप जो है उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कहा देखिए हमारे एक स्वामी जी हैं बाबा जी, उन्होंने कहा कि आपने लीवर खराब हो गया है क्योंकि आप मांस मदिरा का सेवन करते थे, तो आपका लीवर खराब हो गया है, तो अब मैं अगर ये उल्टा होकर के ये आसन करूंगा प्राणायाम करूंगा तो मेरा लीवर ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अगर लीवर ठीक हो गया तो क्या करोगे। कहा फिर से मांस मदिरा का सेवन। तो उसने क्या अपने जीवन में नियंत्रित किया अपनी इंद्रियों को। और यहां क्या कहा गया, आत्म असंयत आत्मना, जो ये मन है उसका विचलित है। कितना भी योग अभ्यास कर ले शारीरिक, लेकिन अपने मन को वो केंद्रित नहीं। हमारे साथ योगा प्रभु जी भी हैं, योगा गुरु जी। प्रभु जी जानते हैं कि मैं संसार को तो योगा सिखाता हूं लेकिन सच्चा योगा सीखने बुधवार को यहां आता हूं। तो ये जानते हैं असलियत क्या है। जो सही मायने में भगवान को समझ जाएगा वो फिर उसी प्रक्रिया में लगेगा। तो मन को कहते हैं, एक लोग अपने मन से करते हैं योग करके मनोरंजन, क्या करते हैं सब लोग बोलिए, क्या करते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए, मनोमंजन। मंजन जानते हैं दांतों की सफाई, ऐसे मन की सफाई को कहते हैं मनोमंजन। तो लोग तो लगे पड़े हैं मनोरंजन में, लेकिन हमें क्या करना है, मनोमंजन, मन की सफाई करनी है, है ना। तो मन की सफाई करने के लिए उत्तम तरीका है ये जो आत्म साक्षात्कार विज्ञान की विधि है। इस विधि में एक बार लग जाए शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान के नाम का जप करना। तो यहां पर प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन है जिसका मन नियंत्रित नहीं है, लेकिन जिसका नियमित है वो सफलता ध्रुव है। और बाद में कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं और कोई साधारण व्यक्ति की पुस्तक नहीं है, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं ये मेरी बात मान लो, अगर तुम इस मार्ग में लग जाओगे भगवद गीता पढ़ने के और हरिनाम जपने के तो तुम्हारी सफलता ध्रुव, ध्रुव नीतिर मतिर ममहा। ये जो ध्रुव की नीति है मतलब ये अटल नीति है, कोई इसे टाल नहीं सकता। लेकिन हम देखते हैं साथ में यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया दुष्प्राप्या, बहुत मुश्किल है। प्रभु जी कहना तो बहुत आसान, लेकिन हमारे लिए मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। आप देखिए एक होता है योग, क्या होता है, और एक होता है भोग, क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, योग तो करते हैं लेकिन साथ में भोग भी करते हैं। बुधवार के कार्यक्रम में आकर के गीता का प्रवचन भी सुनते हैं और फिर बृहस्पतिवार को जाकर के टीवी भी देखते हैं। तो भोग भी करेंगे और योग भी करेंगे तो वैसा ही है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं अग्नि में घी डालने के समान, अग्नि में घी डालेंगे तो कम होगी तेज होगी, तेज हो जाए। तो ऐसे ही मन, आप सोचते हैं मैं तो जप भी करता हूँ, 16 माला भी तक पहुंच गया और मैं गीता भी पढ़ता हूँ, मंगल बुधवार कार्यक्रम में भी जाता हूँ, परंतु मन वश में नहीं है। मन वश में इसलिए नहीं है क्योंकि आप भोग भी करते हैं और योग भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति योग में लगा है उसको भोग निवृत्त हो जाना चाहिए। इसीलिए कहा अभ्यासेन तु कौन्तुये वैराग्यं च गृहेते, योग का अभ्यास करो और भोग का वैराग्य करो, विरक्ति करो, छोड़ दो उसको भोग करने को। लोग बोलते नहीं बड़ा मुश्किल है, अगर हम लोगों के अगर भोग करना छोड़ देंगे तो हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, फेसबुक नहीं करेंगे तो मेरा जगत से नाता ही टूट जाएगा। अभी तो इसी से सहारे मेरी सांस चल रही है, फेसबुक सुबह उठ करके कर अग्रे वसता लक्ष्मी बोला करते थे, अभी बोलते कर अग्रे वसता फेसबुक, कर मध्य व्हाट्सअपम, कर मूलम ट्विटरम, ऐसे करके जीवन जी रहे हैं लोग अपना, फेसबुक व्हाट्सअप। सुबह उठकर हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सुबह उठकर लोग ये नहीं देखते कि भगवान सोए हैं जागे हैं, मुझे जल्दी जागना है जब करना, कहते हैं सुबह उठकर देखते हैं रात में कितने मिस्ड कॉल आए थे। तो आप सोचिए लोग कितना भोग प्रवृत्ति में है, मोबाइल में ही उनका जीवन है, उनका भगवान इस समय मोबाइल है। और पिछले वर्ष गूगल कंपनी ने प्रूव किया, गूगल इज द गॉड, गूगल ही भगवान है, कह रहे हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल का देगा उत्तर? नहीं नहीं, वो प्रोसेस लिख सकता है लेकिन वश में नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कहते हैं अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहोगे नामुमकिन, क्या करो, तुम सिर्फ मेरा भजन करो, मैं तुम्हारे मन को वश में कर लूंगा, तुम मेरा भजन करो, है ना। भगवान कह रहे हैं तुम मेरा भजन करो और कोरी चिंता छोड़ दो, बाकी सारी चीजें मेरी हैं, मैं करूंगा भजन। लेकिन नहीं, हमें तो परिवार की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति से बोलो कि अब आप जप करने लगे हैं, इस्कॉन कार्यक्रम में जाते हैं, जैसे अभी हमने निर्णय लिया कि संडे के दिन कोई क्लास नहीं चलेगी, सब प्रचार करेंगे, नो कोई सेमिनार नहीं, कुछ नहीं, बुधवार बृहस्पतिवार किसी दिन कर लो आप अपने भक्तों के साथ। तो सभी के मन में चिंता आ गई कि अरे बुधवार बृहस्पतिवार को तो शादियां आती हैं, ऑफिस होता है, घर परिवार की जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति जो दीक्षा भी लेने को प्राप्त हो जाता है, गुरु की शरणागत भी हो जाता है, लेकिन वो जिम्मेदारियों को ऐसा समझता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम जिम्मेदारियों से विमुख होना सिखा रहे हैं, जिम्मेदारी करो लेकिन उतनी जिसमें भजन ना छूटे। हनुमान जी से पूछा गया सबसे बड़ी विपत्ति क्या है संसार की, हनुमान जी कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति सोई जा दिन सुमिरन भजन न होई। जिस दिन मेरा भगवान का सुमिरन नहीं होता, भगवान का भजन नहीं होता, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। हमारी विपत्ति, हमारी विपत्ति तो है कि सैलरी नहीं बढ़ रही है, घर का किराया नहीं गया है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, ये विपत्ति नहीं है। और इसी में हमने कृष्ण भजन को त्यागना मंजूर किया लेकिन परिवार की आसक्ति में मोहित है। एक शिष्य थे, उनका नाम था मुकुंद दास, मेरा भी वैसे ही नाम है लेकिन मैं सोच रहा था मेरे ऊपर ही बैठती है। एक व्यक्ति थे उनका नाम था मुकुंद दास, और वो अपने गुरुजी के पास जाया करते थे हर कार्यक्रम में बुधवार को, और जाकर के बहुत कथा सुनते, जप करते, लेकिन उनकी परिवार की आसक्ति नहीं छूट रही थी। योग तो कर रहे थे लेकिन साथ में भोग भी कर रहे थे। अब भोग में इतने लिप्त थे, गुरुजी ने कहा देखो बेटा बहुत साल भोग कर लिया, अब 40 वर्ष की आयु हो गई, अब छोड़ो, धीरे धीरे वानप्रस्थ की ओर बढ़ो, 50 साल पे वान की तरफ प्रस्थान करना चाहिए, वन की तरफ। इसलिए हिंदी गिनती भी कहती है 51, 52, अब तो जावन, फिर भी नहीं जाता आदमी। तो बन जाने का मतलब है कि परिवार के भोग को छोड़ करके योग में लगे और प्रचार कार्य में लगे, भगवान प्रभुपाद जी की सेवा में लगे। वो समझा नहीं, बोले नहीं नहीं गुरुजी आप कहते हैं ये बात अटल है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, पर पत्नी मेरी, मेरे बच्चे बड़ा प्यार करते हैं मुझसे, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। कहा अच्छा बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो आजमा कर दिखाऊं। कहा आजमा लेते, कहा ठीक है। तो उन्होंने शारीरिक योगा सिखाया और कहा शरीर के योगा से श्वास इंद्रियों के अनुसार अपने श्वास को शव आसन में रोक लो और स्नान करते करते बह जाओ, और लोग क्या समझेंगे तुम पानी में डूब गए हो, और तैर करके इस पार आ जाना मेरे आश्रम में, फिर देखते हैं तुम्हारे घर वालों की सोच क्या है तुम्हारे गुजर जाने के बाद में। इसने वैसे ही किया, श्वास क्रियाएं करी और नहाने गया, स्नान करते करते नदी में तैरने लगा, लोग बोले अरे अरे देखो तैर रहा है, तैर रहा है, तैरते तैरते एकदम से गायब हो गया और पानी के नीचे नीचे उस पार निकल गया। गुरु जी के आश्रम में दंडवत प्रणाम किया, गुरु जी आ गया जैसा कहा आपने। गुरु जी बोले अच्छा अब चलें देखें परिवार की क्या स्थिति है। हाँ चलिए, परिवार में पहुंचे, परिवार में जाकर के गुरु जी ने पूछा अरे बेटा तुम्हारा पति गुजर गया, बहुत दुख होगा तुमको। कहा नहीं नहीं दुख तो है लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि जब वो थे तो हमारे घर में उनको भिक्षाटन करने जाना पड़ता था, कुछ पूजा पाठ करने जाना पड़ता था, हमारे घर इतना धन नहीं था, इतने सामान नहीं था। जब से वो गुजरे हैं तो उनके सत्संग कार्यक्रम के जो लोग हैं वो बड़े बेचारे इमोशनल हो गए हैं, भावुक होकर के खाद्य सामग्री, वस्त्र, सारी चीजों का अरेंजमेंट इतना कर दिए हैं जितना प्रभु जी थे तब नहीं होता था, उससे ज्यादा हो रहा है। मतलब माता जी को सामग्री से अटैचमेंट था, प्रभु जी से नहीं था। कोई बात नहीं। वो बोले कि मतलब ज्यादा कष्ट तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं गुरुजी, बस आपके सत्संगी भक्तों का बड़ा प्रेम बना हुआ है, सब सामान आ रहा है, ज्यादा आ रहा है पहले से, खुश है, जीवन अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो उसने कहा, लेकिन आप गुरुजी ऐसी बात बोल रहे हैं लेकिन मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा, मैं एक बार खुद बात करना चाहता हूँ। अरे तुम तो मर चुके, तुम कैसे बात करोगे? अरे नहीं नहीं मैं जाकर बात करूंगा। रात्रि में पहुंच गया, खिड़की से ठक 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 किया। पत्नी बोली, कौन? कहा, मैं मुकुंद दास। कहा से आ गए आप, क्यों आ गए आप? कहा, अरे मैं तुम्हारा पति तुमसे मिलने आया हूँ, बच्चों से मिलने आया हूँ, लेकिन आप तो मर चुके हैं ना। कहा, किसने कहा मैं मर गया? मैं मरा नहीं था। हाँ, हर प्रेत आत्मा यही कहती है, इससे पहले कि बच्चे आपको देखकर डर जाएं और उनके जीवन से प्राण पखेरु हो जाएं, आप एक काम करिए, जल्दी से यहां से चले जाइए। अरे तुमको कोई कष्ट तो नहीं है? हाँ एक ही कष्ट है। क्या? कि आप वापिस आ गए। आप जल्दी से जल्दी यहां से चले जाइए। तब उसको बहुत दुख हुआ, नहीं मैंने जीवन किसमें गुजार दिया? मेरे गुरु जी कहते थे ज्यादा भोग में मत लग। मैं तो लगता था अरे बड़ा प्यार करता है परिवार। सच्चाई ये है, किसी के संसार किसी के रहने से नहीं चलता, किसी के जाने से ना बंद हो जाता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जब तक हम हैं, है ना, हम ही हैं शहंशाह, हम ही चला रहे हैं संसार को। अरे प्रभु जी मैं अगर नहीं पहुंचा ना टाइम पे तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। अगर गुजर जाओगे नहीं पहुंचोगे तो क्या गड़बड़ होगी? अगर प्राइम मिनिस्टर भी चला जाता है तो क्या होता है? वैसे ही वैसे चल रहा है। महात्मा गांधी जब संसार में थे लगता था मैं नहीं चलूंगा तो आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, चल रहा है। सब कुछ वैसा का वैसा ही चलता है, वही चिड़िया अपना दाना खाती है, हम वो ऐसे ही खाना खाते हैं। और ज्यादा देखने वाली बात यह है, मैंने तो एक दिन किसी से बोल दिया था, मैंने कहा कि अगर पति गुजर जाएंगे तो क्या टीवी देखना बंद कर दोगे? एक हफ्ते तक तो बड़ा दुख रहता है, लेकिन एक हफ्ते बाद जाकर देखो तो घर में सास बहू के सीरियल चल रहा होता है, माता रो रही होती है, ये भी ऐसे ही किया करते थे। मतलब भोग की आसक्ति इतनी है कि हमारी छूटती नहीं है, किसी के गुजर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपने समय का क्या करें? सदुपयोग करें और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करें। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण चरणारविंद में अपने मन को हमें लगाना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं, भजरे अमार मन अति मंद, भजरे अमार मन अति मंद, ये मंद बुद्धि है। प्रायण अल्पायेषु कलो आस्मिनिम युगे जना, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो उपाद्रतः। इसमें सुमंद, इतनी बुद्धि हमारी क्षीण है, हमें लगता है कि बस हमारे बस का कुछ नहीं, हमारे बस का घर चला नहीं है। नहीं, आप एक बार इच्छा तो करो कृष्ण सेवा करने की, कृष्ण सारा अरेंजमेंट करेंगे और आपसे सेवा ले लेंगे, आपको करने नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, हम कैसे हैं? भजरे अमार मन अति मंद, भजन बिना गति नाई रे, भजन बिना कोई गति नहीं है, भजन बिना गति नाई रे। तो करें क्या? भज ब्रजे वने राधा कृष्ण चरणारविंद, राधा कृष्ण के चरणारविंद का भजन करना चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो वैष्णव आचार्यों के गीत को घर में अकेले गाने का प्रयास करते हैं? बहुत कम। सोचिए, वैष्णव आचार्यों ने इतने गीत लिखे हैं, इन गीत को पढ़ेंगे ना आपके आंखों से गारंटी है हर बार अश्रुपात होगा, रोएंगे आप कि अरे हम कहां फंस गए संसार में। इतने बड़े बड़े संत लिख रहे हैं कि हमारा मन जो है वो वश में नहीं हो पा रहा है और हमें लग रहा है कि हम बस ऐसे घूमते फिरते 16 माला करेंगे हरे कृष्णा और ठीक है बच्चे, ठीक है हरे कृष्णा और सब बढ़िया चल रहा है और हमारा मन वश में आ जाएगा। कभी भी नहीं होने वाला। मन को वश में करने के लिए पूर्ण शरणागति चाहिए और पूर्ण शरणागति का मतलब है कृष्ण के आदेशों का यथारूप एज इट इज पालन करना, यानी अपनी इच्छा अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए भगवान की शरणागति होना। आप देखें, मन ज्यादातर लोगों का दुखी रहता। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि भक्ति में आने के बाद भी दुख बना हुआ है हमारे जीवन में? दुख प्रभु जी को लगता है, अभी आपको देख करके लोगों ने हाथ खड़ा किया। अच्छा ये बात बताइए, दुख सच में होता है या हमारे मन का होता है? हाँ जी, मन का होता है। एक होता है सापेक्ष दुख, एक होता है सच्चा दुख। सापेक्ष दुख है किसी आदमी का दुख हमारा सुख। जैसे डॉक्टर साहब है, अब डॉक्टर साहब के पास में जो आदमी आएगा दांत का दर्द लेके, पेट का दर्द लेके, उसके लिए क्या है? दुख। इनके लिए सुख। तो इसका मतलब पेट दर्द जो कारण है उसमें कोई दुख नहीं है। बारिश हो रही है, गरीब आदमी रोड पे सो रहा है और एक छाता बनाने वाला वहीं पर अपने छाते बेच रहा है, गरीब आदमी के पास में सोने के लिए कोठरी नहीं है, जगह नहीं है, बारिश में दुख होता तो दोनों के लिए समान दुख होता, लेकिन ये सापेक्ष दुख है इस संसार का कि एक के लिए दुख है दूसरे के लिए सुख है। जिस पे बारिश हो रही है और इस पे रहने का कुछ नहीं, वो क्या कह रहा है, जल्दी बारिश बंद हो जाए भगवान, ऐसा कर बारिश बंद हो जाए। एक कमबख्त बारिश बंद क्यों नहीं होती है? लेकिन जो छाते बेच रहा है वो क्या कह रहा है, ठाकुर जी आज तो सुन ली है? खूब छाते बिक रहे हैं, ये चलती रहे, इसकी झड़ी ऐसी चले 24 घंटे चले, सारे छाते बिक जाएंगे। तो ये कारण में दुख नहीं है, दुख है मन का, है ना। रेड लाइट होती है, आप जाते हैं और आपको मालूम है रेड लाइट के बाद क्या होने वाली है, ग्रीन लाइट। लेकिन उसमें से तीन प्रकार के लोग मैंने देखा है, जो ऑब्जर्व किया है। एक व्यक्ति है जिसको लगता है रेड लाइट क्यों आ गई जीवन में, तो व्यक्ति हॉर्न नहीं बजाता रहेगा। अब उसे दिख रहा है आगे लोग खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, रिक्शा खड़ा है, लोग क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, फिर भी मैं इससे पता चलता है इसका मन कैसा है, चंचलम ही मना कृष्णा, इसका मन चंचल, मैं तो मजे लेता हूँ रोड ना, इसका मन कैसा है, चंचल। दूसरा व्यक्ति है जो कि भौतिक संसार का है, भोगी है, उसको पता है तो वो क्या करता है, फास्ट गाने लगा देता है FM, है ना। और एक भक्त है वो कहता है चलो 2 मिनट, अरे 5 मिनट की होती तो एक माला निकल जाती है ना, उसका मन होता है। और वो बैठ करके थोड़ा तुरंत से अपनी गीता निकालता है, एक श्लोक को याद करने लग जाता है, हाँ हाँ, और मजे लेता है। और फिर उसे पता है दिल की 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद क्या आने वाली है, लेकिन जो हॉर्न बजा रहा था उसे क्या लग रहा था, प्रलय आ गई है, अब तो ग्रीन लाइट कभी नहीं आएगी, जल्दी रास्ता खोलो रास्ता खोलो। उसकी बेचैनी उसके मन की बेचैनी है। रेड लाइट में अगर दुख होता तो तीनों को समान दुख होता। ऐसे आपके जीवन में जो कारण उत्पन्न होते हैं, ये मन को आप सोचते हैं मैं वश में कर लूंगा, मेरा मन दुखी होना बंद हो जाएगा, ये दुख सिर्फ महसूस करने का है। सच्चाई ये कि संसार में दुख है ही नहीं, ये सारे सापेक्ष दुख हैं। कोई भी दुख ऐसा नहीं आप कह सकते कि अरे प्रभु जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं, कोई ना कोई दुख तो ऐसा होगा जो कि किसी के लिए अच्छा होगा, सबके लिए समान होगा। 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी, ये कैसा है, सुख है या दुख है? सुख है। जिसके पास 100 करोड़ रुपया उसके लिए क्या है? अंबानी जी का जो घर है उसकी कीमत है 6,700 करोड़ रुपए, एंटीला टावर बॉम्बे, उसके लिए 1 लाख रुपए क्या है, खुशी मिलेगी? कहेगा गार्ड आपस में बांट लो आप लोग। तो अभी आपने बोला सुख है, इसका मतलब आप जिनको सुख या दुख मान रहे हैं वो है ही नहीं जीवन में। इस तरह से आपका मन, आपको लगता है कि मैं वश में करूं या ना करूं, मेरा मन चंचल है। अगर सच्चाई देखें तो आप अगर इस चीज को भरोसा कर लें, हर कारण के पीछे मेरे प्रारब्ध है, मैंने कुछ किया उससे ये कारण उत्पन्न हुआ, दूसरा मैं इससे संबंधित नहीं हूं, मैं इससे संबंधित नहीं, ये कारण तो उत्पन्न हुआ है, किसी के लिए सुख है किसी के लिए दुख है। एक और परिस्थितियां देखते हैं, एक परिस्थिति देखते हैं, दूध का उफन जाना। इसी में सोच रहा था क्या हम परिस्थिति सोच सकते हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण से जल्दी समझ आता है ना। और शास्त्रीय उदाहरण तो सुनते सुनते समय चला गया, मन चंचल ही है हमारा, अभी भाग ही रहा है। घर में दूध का उफन जाना माताएं, क्या है, दुख है या सुख है? अभी देखेंगे तीन परिस्थितियां। एक व्यक्ति है जिसकी 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी है और उसके बच्चे ने कहा मां, एक फोन आया बोले आपकी 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी है चेतना माता जी, और तभी बच्चे ने आके कहा मां दूध उफन गया, कैसा लगेगा? कोई बात नहीं। सब्जी खरीदने आप गए, सब्जी खरीदने पर 100 रुपए का फायदा हुआ है, बस 100 रुपए का फायदा, और बच्चे ने आके कहा मां दूध उफन गया, तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? चलो ठीक है यार, 100 का नुकसान हो गया, 100 का फायदा हो गया, न्यूट्रल। लेकिन अभी खबर आई है आपके पति ने आकर कहा, कृष्णदेव प्रभु आकर कहते हैं 10,000 रुपए गिर गए मेट्रो में, और बच्चे ने कहा दूध उफन गया, क्या है, बच्चा बचेगा गया होता, तो इसका मतलब दुख का कारण दूध उफन ना था क्या? बस हम कारण से अपने आप को जोड़ते हैं, ये जो है ना, ये आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल है। अपने मन को मनोमंजन करने का मतलब है, मन को सदा कृष्ण चरणों में लगाएंगे। तो महाराज आचार्यगण बताते हैं कि एक जगह जब 1 लाख की लॉटरी निकली तो दुख का रंच मात्र भी असर नहीं हुआ। अगर मन सदा प्रसन्न रहेगा, कृष्ण चरणों में रहेगा, हरि नाम में रहेगा, तो किसी भी दुख का कोई असर होगा? कभी नहीं होगा, है ना। मन में कहते हैं, मन में सदा प्रसन्नता कैसे आएगी? ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना शोचति ना कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। तो अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, अगर वो आत्मा को समझ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, कौन हूं? आत्मा हूं, तो उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये मन सदा प्रसन्न इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम भोग भी करते हैं और योग भी करते हैं। खाली योग के प्रति अगर पूर्ण पूरा शरणागति हो जाए तो मन सदा कैसा रहेगा? प्रसन्न रहने वाला है। तो इसलिए मन जो है इसको और दूसरे तरीके से अगर समझें, नियंत्रित करने का तरीका, मन को क्या चाहिए? जैसे आपका बच्चा है, यह भी उदाहरण है, आपका बच्चा बार 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 आपके काम में आपको तंग कर रहा हो तो आप क्या करते हैं? हाँ, मन आपका जैसे बच्चा है, वो बार बार आपको तंग कर रहा है, आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आ रहा है, आप खाना बना रहे हैं तो आ रहा है, तो आप क्या करते हैं ऐसा कि वो बच्चा जो है आपको तंग करना बंद कर दे? उसको खिलौना पकड़ा देते हैं, कुछ काम पकड़ा देते हैं। तो ये जो मन बार बार आसक्त हो जाता है कारण में, दुख को ढूंढता है, तो अपने मन को किसी कार्य में संलग्न कर दीजिए। मन जो है ये खाली दिमाग शैतान का घर है। दुख होता नहीं है तो दुख के कारण ढूंढता है, कुरेद कुरेद के, मेरे साथ मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया था ना, इसलिए मैं दुखी हूं। है सच्चाई ये है कि दुख है ही नहीं संसार में कोई भी, क्योंकि आप जैसा करके आए हैं वैसा ही आप काट रहे हैं, जैसा बोकर आए हैं बीज वैसा ही मिल रहा है। लेकिन हम उनसे सोच रहे हैं ये दुख है ये सुख है, ये दुख है ये सुख है। एक बार अपने मन को सदा संलग्न कर देंगे कृष्ण भावना भावित कार्यों में तो दुख उत्पन्न होने ही बंद हो जाएंगे। जीवन कोई दुख नहीं होगा लाइफ में। जैसे मैं प्रवचन देने आया हूं, मेरे मन में ये अभिलाषा लेके आऊं कि इसके अंत में सभी ताली बजाएंगे, है ना, ये आशा, लेकिन नहीं बजाई। बोले समझ ही नहीं आया, इतना गूंज रही थी आवाज, आप बोले क्या हमें समझ में नहीं आया, इतनी तेज तेज बोल रहे थे, आप ही की समझ में आया हो तो बहुत है। तुम मुझे कहा ताली नहीं बजाई, दुख है यार, सोच के बेहतर ताली बजनी चाहिए। लेकिन कहां दुख, मैंने अपना खुद का बनाया हुआ ना, ये कुरेद कुरेद के दुख हम बना रहे हैं अपने जीवन में। तो ये जो मन है इसको संलग्न करना बहुत जरूरी है। जैसे कि कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसको भगवान से उसने प्रार्थना करी कि भगवान मुझ पर आप कृपा करें। भगवान ने कहा ठीक है कृपा करिए। बोलो क्या काम है? कहा कि मेरे इतने सारे बिजनेस हैं अलग अलग देशों में, कभी जाना पड़ता है अफ्रीका, कभी अमेरिका, कभी ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ऐसा कुछ काम करा दो, एक व्यक्ति दे दो जो सारे काम निपटा दे और मैं भजन करूं। कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने एक वो दे दिया, जिन होता है ना, जिन, जिन दे दिया। कहा लो तुम्हें जिन देता हूं। ये जिन दे दिया और कहा ये जो काम कहोगे वो तुरंत कर देगा। कहा ठीक है। तो जिन जैसे आया बोला जो हुक्म मेरे आका। कहा जाओ मेरे दुबई की फैक्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है, सॉल्व कर दो। तुरंत गया, दो मिनट में सेट करके वापस आया, इतनी जल्दी। कहा आप ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी में जाओ, ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी में जाकर तुरंत वापस, अमेरिका में जाओ वहां से तुरंत वापस। सारे काम जब तुरंत कर दिए तो उन्होंने कहा कि आप कोई काम? बोले नहीं। बोले एक काम मेरा है, क्या? अब मैं तुम्हें खाऊंगा, अब तुम्हें खाऊंगा। तो उसने कहा अरे खा क्यों रहे हो, भगवान बचाइए, ये मुझे खाने वाला है। बोले ये इसका तरीका है, या तो इसे काम में लगा के रखो, नहीं तो खाली बैठता है तो ये अपने मालिक को ही खाता है। अच्छा मालिक को खा जाएगा? कहा हाँ। तो फिर काम क्या दूं, और सारे काम तो समाप्त हो गए। तो भगवान बोले मैं ही तरीका बताता हूँ, है ना, हर देवी देवताओं को भी मैंने मुश्किलों से बाहर निकाला है, तुम तो मैं निकाल ही दूंगा। एक गड्ढा खोदो। खोद दिया उसने तुरंत जिन ने। कहा इसके अंदर एक बड़ा सा डंडा गाड़ो 15 फीट का। गाड़ दिया। बोले अब इसको ऑर्डर दो कि ऊपर जाए नीचे जाए, नीचे जाए ऊपर जाए, ऊपर जाए नीचे जाए। बोले जब कोई काम लगे तो डंडे से उतार लेना, वरना इसी डंडे पर ऊपर नीचे चढ़ते रहने देना। तो ये देखा जाए सही मायने में तो हमारा मन भी ये जिन के जैसा है। भगवान से हमने प्रार्थना करी कि भगवान हम आपके इस वैकुंठ धाम में मालिक बनना चाहते हैं। भगवान बोले एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं, मालिक बनना है तो जाओ भौतिक संसार के मालिक बनो, मकान मालिक, फैक्ट्री मालिक, पत्नी के मालिक, परिवार के मालिक। तो छोटे छोटे मालिक सब बन गए। लेकिन उन्होंने कहा कि सब मालिक तो बन गए हो, है ना, लेकिन साथ में मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, एक मन दे रहा हूं तुमको, ये मन जो है मेरी चरण में लगा के रखना। मैं अर्पितम मना बुद्धि, अपनी मन और बुद्धि मुझे अर्पित करके रखना। अर्जुन को भी भगवान ने कहा मम अनुस्मरणम युद्ध चा, और अपने कार्य करते रहना मेरा स्मरण करते हुए। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, जब कार्य में लगते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, और जब भगवान में लगते हैं तब भी कार्यों को याद रखते हैं। तो मन कभी पूरा पूरा ठाकुर जी के चरण में लगा पाते हैं? जिस दिन लगा दिया, आप देखिए फिर मजेदार लाइफ हो जाती है एकदम, है ना। यहाँ पे इतने भक्त हैं, ये धोती कुर्ते वाले हर बुधवार को दौड़कर काम धंधा छोड़कर आके बैठते हैं, एक स्पीकर बुलाते हैं बाहर से, वो प्रवचन देते हैं। उसका कारण क्या है? देखो, कुछ तो आनंद आता हो कथा ऑर्गेनाइज करने में, है तो इसका कारण ये है कि इन्होंने पूरा पूरा अपना जीवन जो है वो भगवान की सेवा में, चरणों में लगाया है। और जब ये काम पर भी जाते हैं, प्रभु जी बताते रहते हैं, काम पर भी जाते हैं तो हमेशा दिमाग में चलता रहता है मुझे शाम को सेंटर पे जाना है, इनकी बेटी जी देनी है, उनका वो डोनेशन लेना है, उनका प्रोग्राम में जाना है, उधर ये इधर लेक्चर देना है। सो व्यस्त है मन हमेशा, लेकिन काम मम अनुस्मरणम युद्ध चा, अपना काम कर रहे हैं। लोग सोचते हैं भक्त बनने का मतलब काम धंधा छोड़ना है, नहीं, घर परिवार को देखो लेकिन साथ में भगवान का स्मरण करते हुए देखो, है ना। ऐसा प्रभुपाद जी ने हमको बताया कि अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो सही मायने में हम अपने मन को भगवान के शरण में लगा पाएंगे। तो यहां पर अगर किसी व्यक्ति ने भगवान के शरण में, अभी कोई बोल सकता है प्रभु जी आप कह रहे हैं ना हम तो ऐसे ही हैं, हमारा मन सदा ठाकुर जी भगवान जी के चरणों में, बचपन से, कई लोग आते हैं कह रहे हैं अरे आप क्या बता रहे हैं हमको, बचपन से हम तो भक्त हैं। अरे जी धन्यवाद, दंडवत प्रणाम, बचपन से भक्त हैं, हम तो नहीं थे बचपन से। तो जो भक्त है वो थोड़ा पढ़ते हैं कि आप अपना थर्मामीटर से टेस्ट करिए कि आप शरणागति हैं पूर्ण रूपेण। तो छांदोग्य उपनिषद के अंदर 8 लक्षण बताए हैं, जो व्यक्ति भोग नहीं करता खाली योग करता है, जो जीवन मुक्त व्यक्ति है उसमें 8 लक्षण प्रकट होते हैं। अगर ये 8 लक्षण आप में हैं तो आप पूर्ण शरणागत हो चुके हैं, नहीं है तो फिर प्रभु जी के साथ रहिएगा, ये आपको करवा देंगे। पहला है अपहत पाप। अपहत पाप मतलब वो व्यक्ति जो है वो अब पाप नहीं करता है, पाप रहित हो जाता है। अपहत पापम, पाप रहित हो जाता है, 4 नियम का दृढ़ता से पालन करता है, चीटी मच्छर कुछ भी वो नहीं मारता है। श्रील प्रभुपाद जी जो थे उनके कमरे में जब ऑल आउट लगा देते थे तो प्रभुपाद जी वृंदावन में एक भक्त को आवाज दिया है हरि बोल, वो दौड़कर आया, बोले जी प्रभुपाद, बोले ये ऑल आउट किसने लगाया? ऑल आउट जानते हैं ना, ऑल आउट हो जाता है हम लोग, ऑल आउट जो मच्छर को भगाने के लिए इस्तेमाल किया। प्रभुपाद जी बोले इसको निकालिए, बोले प्रभुपाद ये मच्छर को नहीं मारता है। प्रभुपाद जी बोले मैं मानता हूं मच्छर को नहीं मारता है लेकिन मच्छर को बेहोश तो कर देता है, और किसी जीवात्मा को कष्ट पहुंचाकर हमको क्या आनंद की प्राप्ति होगी। तो प्रभुपाद जी तुरंत ऑल आउट वहां से बाहर निकलवा दिए। तो प्रभुपाद जी से उन्होंने कहा प्रभुपाद यहां लेकिन मच्छर बहुत है। प्रभुपाद जी बोले मच्छरदानी भी तो है, मच्छरदानी लगाकर मैं मच्छर से बच जाऊंगा लेकिन किसी जीवात्मा को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। तो जैसे ही भक्तों ने मच्छरदानी टांग दी तो वहां पर देखा कि एक पतंगा, जो कि ज्यादातर मोमबत्ती वगैरह पे देखा जाता है बारिश के दिनों में, वो पतंगा दौड़ता दौड़ता वो मच्छरदानी के अंदर प्रवेश कर गया। भक्त बोले प्रभुपाद रुकिए अंदर एक पतंगा है। प्रभुपाद जी बोले कहाँ है? तो उन्होंने धीरे से मच्छरदानी को हटाया और कोमल हाथों से उस पतंगे को पकड़ा ताकि वो मर ना जाए। भक्त तो दौड़कर मारने वाले थे, हम लोग बड़े एक्सपर्ट है ना, मच्छर बैठा तो ताली बजा देते हैं, है ना, हरे कृष्ण में नहीं बजाते ताली, मच्छर के बैठने में बजा देते हैं। हमारे श्री निकेत प्रभु चिल्लाते रहे ताली बजाइए, वो बजाते ही नहीं है, वो सिर्फ ऐसे कर, लेकिन उस टाइम नहीं बजाते हरि भगवान के हरि नाम में, मच्छर बैठे तो तुरंत उड़ाते हैं, यहां बैठे तो मार भी लेते हैं ऐसे करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले रुको रुको आप लोग तो इसको दरिंद्र की से मार दोगे, मैं इसको बचाऊंगा। और उन्होंने कोमल हाथों से पकड़ा और वृंदावन के अपने रूम से, आपने देखा है ना म्यूजियम वाला क्वार्टर, वहां से बाहर निकलकर जो गार्डन है गोविंदास के आगे, वहां आकर प्रभुपाद जी ने उसको धीरे से छोड़ दिया और देखा आराम से, भक्त बता रहे प्रसन्नचित होकर देख रहे हैं कि वो वापिस पतंगा कैसे पत्ते को धीरे धीरे खा रहा है। क्या हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति? अपहत पापम, ये पहला लक्षण है जो व्यक्ति भक्त बनता है। और इसीलिए कहते हैं ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वोह विनिमुक्तम भजते माम दृढ़वताम। वो व्यक्ति दृढ़ता से मेरा भजन कर पाएगा जिसने ये शाम तु अंतगतम पापम, जिसके पाप समाप्त हुए हमारे, इसीलिए हमारा दृढ़ता से भजन। ये लोग कहते भजन में मन नहीं लग रहा, दृढ़ नहीं हो रहा, पाप ही समाप्त नहीं हुआ। और पाप का बाप कौन है? हिंदुलेश प्रबोधानंद सरस्वती महाराज एक लेक्चर में बोल रहे थे, पाप का बाप कौन है बता सकते हैं? पाप का बाप मतलब पाप को किसने जन्म दिया, उसकी जननी कहां से है? अपराध, पाप अपराध तो भाई भाई अलग अलग है। हाँ, विस्मरण। पाप का बाप, पाप को किसने जन्म देता है, कहां से पाप प्रारंभ होता है? इच्छा, लोभ, लालच। पाप का बाप है, आज आपको पता चला, फादर ऑफ पाप सिन लोभ ग्रीड लालच। पाप का बाप है लालच। कैसे? तो महाराज एक कथा बता रहे थे कि एक बार एक वैश्या थी जो कि नृत्य किया करती थी, उसके घर के सामने एक मंदिर हुआ करता था। सभी लोग श्राद्ध आदि में और भजन के बाद में कुछ प्रसाद बनाकर के मंदिर में जाकर पंडित जी को खिलाया करता था। वैश्य का भी बड़ा मन करता था कि मेरा धंधा तो खराब है पर मेरा मन तो साफ है, मैं भी चाहती हूँ कि पंडित जी को भोजन कराऊं, लेकिन पंडित जी तो मेरे हाथ का खाएंगे नहीं, क्योंकि कहेंगे वैश्य के घर से आया, मैं तो नहीं खाऊंगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो पंडित जी तो मना कर देंगे, मैं तो नहीं खाऊंगा इसका। तो एक दिन वो बहुत मन लगाकर स्नान करके पवित्र होकर के प्रसाद बनाई और पंडित जी के लिए भिजवा दी किसी और के द्वारा, और बोली बता देना उन्होंने बनाकर भेजा। जैसे ही पंडित जी ने देखा वो बैठकर पाने लगे, ब्राह्मण थे, मंदिर में पुजारी थे, पूजा करते थे, जाति ब्राह्मण, जात गोसाई जो होते हैं, जैसे ही प्रसाद पाने लगे तुरंत उसने कहा ये वैश्य ने बनाकर भेजा पंडित जी आपके लिए। कहा हटाओ इसको, मैं नहीं छूता, उसके घर से आया हुआ। वो आकर के बताई, लड़की बोली कि आपका प्रसाद लेने को मना कर दिया, जैसे ही आपने सोचा था वैसा ही हुआ, मना कर दिया। कहा अच्छा ठीक है, अगर मना कर दिए हैं तो उनको जाकर कहो कि मैं 10 सोने की अशर्फी दूंगी दक्षिणा में, अगर वो ग्रहण कर लेंगे। तो आकर के बोली, बोले वो कह रही हैं कि 10 सोने की अशर्फियां देंगे आपको अगर आप प्रसाद ग्रहण कर लें। पंडित जी पहले तो सोचे 10 सोने की अशर्फियां, ठीक है लाओ प्रसाद। तो पाप का बाप क्या था? लालच। तो इस संसार में हम जितने भी पाप करते हैं उसका कारण है कि हम लालची हैं, है ना, थोड़ा से ज्यादा कमाने की अभिलाषा है, और इसी कारण से पाप हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अपहत पापम जब आप हो जाएंगे तो पहला लक्षण है आप जीवन मुक्त हुए हैं। दूसरा है वी जरा, जरा जो है बुढ़ापा, उसको व्यक्ति ने जीत लिया हो, अब वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा। जो व्यक्ति भक्त होगा, शरणागत होगा, वो कभी बूढ़ा। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अपना वृंदावन का कमरा त्याग कर, आराम को त्याग करके अमेरिका जा रहे हैं, और दो हृदय रोग हो रहे हैं, दो बार हृदय घात अटैक, हार्ट अटैक हो रहा है। अगर बुढ़ापा आता तो इसका मतलब शरणागति नहीं है। तो प्रभुपाद जी से कई बार भक्त पूछते थे कि प्रभुपाद जी हम वृंदावन जाकर के अब सोच रहे हैं, बहुत सेवा कर ली, 25 साल की उम्र में इस्कॉन ज्वाइन किया था, अभी 35 साल होगा, 10 साल से सेवा कर रहे हैं, अब जाकर हम वृंदावन में गाय की सेवा, गौशाला बना के छोटी सी कीर्तन करेंगे, वहां भजन कुटीर बना के वहीं रहेंगे आराम से। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, जो बूढ़े हो चुके हैं वो चले जाएं। तो बोले हम तो बूढ़े नहीं है। प्रभुपाद जी बोले कि जिस दिन मैं अपने आप को बूढ़ा समझूंगा उस दिन प्रचार कार्य बंद करके वृंदावन में अकेला रहूंगा जाकर। और 81 साल की उम्र तक प्रभुपाद जी प्रचार करते रहे, इसका मतलब उन्होंने वी जरा, जरा को जीत लिया, बुढ़ापा नहीं आता है। सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे 21 किलोमीटर की, आप कभी कभी करते हैं, उसके अगले एक हफ्ते तक आप लोगों को आपकी चाल देख के लोग बताते हैं अच्छा अच्छा परिक्रमा से आए हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी रोज परिक्रमा करते थे, कई बार बेहोश होकर गिर जाते थे, स्वयं कृष्ण आकर कहते हैं कि अभी छोड़ दो बाबा, कितना परिक्रमा करोगे। लेकिन वो कहते हैं ये मेरे जीवन का नियम है, जब तक शरीर में प्राण है परिक्रमा करता रहूंगा। तो उन्होंने बाद में ठाकुर जी ने कृपा करके उनको एक अपना गोवर्धन शिला दिया, जिसको आप देखते हैं राधा दामोदर मंदिर में है, कहा कि अगर तुम इसकी चार परिक्रमा करोगे मैं भी तुम्हारी परिक्रमा मान लूंगा। सनातन अब ज्यादा परिक्रमा क्या, तुम्हारी उम्र 81 साल की है। तो ऐसी अवस्था में चार परिक्रमा उनको दी, यहां जाते 20 साल के बच्चे नए नए, और राधा दामोदर में चार परिक्रमा कर लेते, कहते हो गया जी परिक्रमा हो गई हमारी, ठाकुर जी ने कहा था सनातन गोस्वामी को, कैसी अवस्था में कहा था, जब वो रात दिन दृढ़ थे, आपको चार परिक्रमा करने से फल नहीं मिलेगा गोवर्धन परिक्रमा का। ये विशेष परिस्थितियों में टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के लिए उदाहरण दिया गया, हमारे लिए थोड़ी है। हम 21 किलोमीटर भी कर सकते हैं, तो हमें पहले वो करना चाहिए, जिस दिन गिर जाएंगे और भगवान कहेंगे अब तुम वो कर लो तब आप कर लेना। तो वी जरा, जिसने बुढ़ापे को जीत लिया हो वो व्यक्ति जीवन मुक्त है। तीसरा है विमृत्यु, उस व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती, जो शरणागत है, जो आत्म साक्षात्कार रहती है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई और कथा सुनाने के 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम के 7 दिन रात रात में लगातार सुना डाले। आखिरी में परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं, परीक्षित अब तुम्हें डर लग रहा है क्या, आप तुम्हारी मृत्यु होगी? क्योंकि पहला प्रश्न तुमने पूछा था मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, जो मरने वाला है या फिर जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो अभी तुम्हें क्या लग रहा है, तुम मरोगे, तुम्हें डर लग रहा है? कहा डरता तो वो है जो मरता है। तो बोले इसका मतलब, बोले मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। कह रहे मरे ही नहीं, मतलब कहा मरता तो शरीर है और मैं कौन हूं, आत्मा कभी मरती है? नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलोदन्ति आपो नैनम शोषते मारुतः। इसे न काट सकते, न जला सकते, न सुखा सकते, न भिगो सकते, ऐसी आत्मा की कभी मृत्यु होगी क्या? मृत्यु नहीं होती है। तो विमृत्यु उस व्यक्ति का उदाहरण है जो व्यक्ति ने पूर्ण शरणागति आत्म साक्षात्कार की कर दी है। चौथा लक्षण है विशोकः, उस व्यक्ति को कभी दुख नहीं होता। तो अभी हमने चर्चा किया दुख, दुख किसमें है, मन में है या कारण में है?
मन में।
हाँ जी, पीछे वाले लोग सो गए हैं। दुख किसमें है, मन में है कारण में है? मन में। मन में दुख है। तो अभी दुखी होंगे नहीं होंगे आप लोग? अब सोचना जी कारण में दुख थोड़ी है, हमारे मन में दुख है, और मन तो हमारा कृष्ण के भजन के लिए बना है, हटा दुख को, परे हटा, एकदम टेंशन फ्री लाइफ, एंजाइटी फ्री लाइफ, यही आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल है। इस पे लोग 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं अपने, कॉर्पोरेट में जाकर सेमिनार देते हैं। ये सच्चाई ये है कि ये सिंपल सी चीज है कि कारण में दुख नहीं है, दुख हमारी सोच में है। कैंसर दुख है या खुशी है? कैंसर दुख है, फिर पहुंच गए दुख में। ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट जो है, जिसने 15 साल ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी, MBBS किया, उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट बना कैंसर के रोग का निरोग करने वाला, उसके घर वाले तो रात दिन अगरबत्ती जला के यही बोलते होंगे सारे कैंसर में ही पीड़ित हो। अगर वो बोले सारी निरोगी काया हो संसार में सर्व सुखी नाम भवंतु, अगर वो बोलेंगे तो भैया उनका तो धंधा बंद, बच्चे कहां से पेस्ट्री खाएंगे। तो कैंसर में दुख है या नहीं है? नहीं है। कैंसर सोच में दुख है, और जिसको आया है बोले जिसको आया उसको तो दुख है, उसको क्या दुख है, शरीर को आया है ना, आप कौन है? आत्मा। आत्मा को कैंसर कौन करेगा, जला नहीं सकते तो कैंसर कौन कर सकता है उसको, तो दुख है ही नहीं। तो विशोकः, और विशोकः व्यक्ति के लिए उदाहरण कहा गया है, श्लोक आता है उसमें 15वें अध्याय में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति शोक रहित रह सकता है जिस व्यक्ति ने इस श्लोक को अपने जीवन में पूरा उतार लिया हो। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्यम विनवृत्त कामा द्वंदे विमुक्तम सुख दुख संगे गच्छन्ति मोड़ाम पदम अव्यम ततः। मेरे अव्यम पद को वो प्राप्त करेगा जिसने निर्माण मोहा, अपने जीवन से मान की अभिलाषा को मिटा दिया है। जन्माष्टमी में सेवा करने आए, गले में हार नहीं पहनाया या किसी ने दंडवत नहीं किया तो मन में दुख लगता है, इतनी सेवा करी थैंक यू भी नहीं बोला। निर्माण मान की अभिलाषा, निर्माण कोई मान की अभिलाषा नहीं, मोह जीवन की आसक्ति, अपने भी कथा सुनी आसक्तियां समाप्त हो। जित संग दोषा, जिस व्यक्ति ने असत्संग का त्याग किया है ना, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, वैष्णव का आचार है ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दो, ऐसी चीजें देखना छोड़ दो जो आपको भक्ति से दूर ले जाएं। जित संग दोषा, जिसने संग के दोष को जीत लिया है। अध्यात्म नित्यम, वो सदा अध्यात्म में लगा रहता है। विनिवृत्त कामा, और काम वासना से वो निवृत्त रहता है। द्वंदे विमुक्तम, और उसके मन में द्वंद नहीं चलते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या अच्छा क्या बुरा, कथा सुनने जाऊं ना जाऊं, सेवा करूं ना करूं, दीक्षा लूं ना लूं। द्वंदे विमुक्तम सुख दुख संगे, ऐसा व्यक्ति जो है वो व्यक्ति कहां पहुंच जाएगा, अव्यम पद को प्राप्त करेगा, अपना शरीर छोड़ने के बाद में भगवान कहते हैं मेरे धाम को आएगा। इतनी गारंटी कोई देगा? प्रभु जी LIC में है, प्रभु जी LIC गारंटी देती है मरने के बाद प्रीमियम तुम्हारा वैकुंठ धाम पहुंचाऊंगी? नहीं देता कोई भी गारंटी। तो इस संसार में कौन गारंटी? कृष्ण गारंटी दे रहे हैं। फिर आगे कहते हैं पांचवा लक्षण है विजय घटसा, जिस व्यक्ति की इंद्र तृप्ति की अभिलाषाएं समाप्त हो गई हो। विजय घटसा, इंद्र तृप्ति की अभिलाषाएं। तो लोग आकर के पूछते हैं प्रभु जी आप बताइए ना मैं कैसा भक्त बन गया हूं। तो प्रभुपाद जी कहते थे इसको पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप जब खाना खाने बैठते हैं आपका पेट भरा है किससे पूछकर पता चलता है आपको? हाँ जी, पेट भरा है कैसे पता करते हैं आप? किसी को फोन करके पूछते हैं बताइए जरा मैंने 8 रोटी खा ली मेरा पेट भरा नहीं भरा? कौन बताता है? आपका खुद का पेट बताता है। ऐसे ही आपकी इंद्र तृप्ति की अभिलाषाएं समाप्त हुई नहीं होनी कोई नहीं बताएगा, आप खुद अपने जज हैं। आप जानते हैं कि अभी मेरी मन कितना चंचल है, कहां कहां भाग रहा है, अभी भी गोलगप्पे देख करके मुंह में लार आती है कि नहीं आती है। ओहो अब तो स्कॉन में आ गए, मना कर दिया, पहले तो निपटा डालते थे 15-20 प्लेट। ऐसा भावना जिसको है वो भी विजय घटसा है क्या? अभिलाषा है ना। हम तो यहां मन की चर्चा कर रहे हैं, एक्टिविटी में आपने किया नहीं किया, आपने हो सकता है बाहर खाया नहीं खाया लेकिन मन में तो अभी लालसा उत्पन्न है ना एक दिन वो खाने पे मजबूर कर देगी, है ना। तो इसलिए मन में भी आ रहा है इसका मतलब अभी पूर्णता भगवान की भक्ति में लगे नहीं है। फिर आगे है अपिपात, अपिपात मतलब बस एक ही इच्छा रहे कि अब मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, बाकी सारी इच्छाएं समाप्त। एक बार श्रील प्रभुपाद जी भागवतम प्रवचन दे रहे थे, विदेश की बात है, प्रवचन देने के बाद में प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया और हर बार पूछते थे एनी क्वेश्चन। इस बार प्रभुपाद जी बोले श्रीमद भागवतम ग्रंथ की जाए और उठकर प्रभुपाद जी चल दिए और कहीं और जाना था प्रोग्राम के लिए। और एक भक्त तड़प रहा था हमारे सौरभ प्रभु जैसा प्रश्न पूछने के लिए, वो बहुत प्रश्न पूछते मेरे से, तो वो बोले प्रश्न पूछना था प्रभुपाद जी तो चले गए और प्रभुपाद जी ने लेक्चर किस पे दिया था? प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया था ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते कामा कामात क्रोधात उपजायते, कि सारा काम जो उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है, इसकी जड़ है ध्यायतो विषयान पुंसा, विषय की इच्छा जागृत होना। अब उसके मन में आया कोई की विषय की इच्छा जागृत ना हो तो फिर इच्छा किस चीज की जागृत हो, कैसे इच्छा होनी नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी के पीछे पीछे भागा और भक्त प्रभुपाद जी को थैंक यू प्रभुपाद, यू आर ग्रेट प्रभुपाद, वी आर फॉर्चुनेट प्रभुपाद, यू केम हियर प्रभुपाद, तो बहुत सारे बहुत धन्यवाद देते हैं और कार में बिल्कुल गेट तक रहते हैं हम भी गुरु महाराज वगैरह के साथ में और बिल्कुल प्रभुपाद जी को कार में चढ़ा दिए। प्रभुपाद जी डंडा लेकर के अंदर बैठ गए, खिड़की खोलते थे प्रभुपाद हरे कृष्णा बोलने के लिए, तो खिड़की खोले तो वो प्रभुपाद जी का हाथ पकड़ लिया, बोला प्रभुपाद वन क्वेश्चन, एक प्रश्न है। प्रभुपाद जी बोले बोलो, अभी तक प्रश्न नहीं पूछा आपने, लाइन टाइम पे पूछ, बोलो प्रभुपाद जी आपने कहा जीवन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए तो इच्छा भी दी क्यों भगवान ने? कहा ताकि हम उनकी इच्छा करें, ओनली वन डिजायर कृष्ण कॉन्शियस डिजायर, कृष्ण भावना भवित इच्छा होने के लिए इच्छा दी गई है, अगर इसके अलावा कोई और इच्छा है तो अभी हम अपिपात कैटेगरी में नहीं आते हैं, अपिपात श्रेणी में नहीं आते हैं। गोपियों की क्या इच्छा थी? पति खुश रहे या कृष्ण खुश रहे? आपकी क्या इच्छा है, पति खुश रहे या कृष्ण? दोनों ने हाँ, मतलब यहाँ पता चल गया, देख लीजिए भाई जो जो बैठे हैं आपके साथ में ना आपको कितना प्रेम करता है, आज ही आ जाओ हमारे साथ में, मंदिर में बहुत जरूरत है भक्तों की। तो सातवां उदाहरण, सातवां लक्षण बताया गया है सत्य कामा, कामा मतलब इच्छा, सत्य मतलब सदा सत्य की इच्छा रहे जिसकी, सत्य कामा। और संसार का सत्य कौन है? कौन है सत्य? कृष्ण। तो अगर कृष्ण की कामना है उस व्यक्ति को, एक तरफ तो है खाली कृष्ण की इच्छा की कामना और एक सत्य कामना यह है कि जैसे भी कर करके मेरी जो आत्मा है वो भी सत्य है क्योंकि वो मरने वाली नहीं है और भगवान भी परमात्मा भी मरने वाले नहीं है, वो सदा विराजमान रहते शाश्वत, तो मेरी जो आत्मा है सदा वो परमात्मा की सेवा में रहे, सत्य कामना रहे मेरे जीवन में, कृष्ण की कामना रहे, तो सही मायने में लक्षण प्रकट है कि इसने शरणागति की, सत्य कामा। और आखिरी है सत्य संकल्प, आठवां लक्षण क्या है? सत्य संकल्प। सत्य संकल्प का मतलब है कि वैसे तो कोई इच्छा ना रहे, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनावृतम, अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाएं क्या हो जाएं? जीरो। लेकिन अगर हो भी तो कौन सी हो? हाँ जी, भक्ति की, कृष्ण को प्रसन्न करने की। तो इसलिए अगर ये 8 लक्षण आप में हैं तो आप जीवन मुक्त कहलाएंगे, आप अपने मन को अपने वश में कर पाएंगे। तो मैं जल्दी समाप्त करता हूं, समय हो गया है। अगर हम चाहते हैं ऐसा जीवन मुक्त अवस्था आए, कितने लोग चाहते हैं ऐसी अवस्था आए? कई लोग नहीं चाहते भी नहीं, अगर आए ना छोड़ ना, कहाँ झंझट में फंसना, बढ़िया चल रहा है धंधा पानी अपना, घर में लड्डू पेड़े मिठाई। तो ऐसे जीवन मुक्त अवस्था के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे ऐसी अवस्था बताइए, क्या करेंगे ऐसी अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था, कृष्ण शरणागति, मन नियंत्रित, ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए करें क्या? व्हाट टू डू? हाँ जी, डिवोशनल सर्विस, सेवा प्रचार, ओके, शुद्ध भक्तों का संग। अभी फिर उसमें चेक करना पड़ेगा, शुद्ध भक्त मिल रहे नहीं मिल रहे, आप में फिर अपराध लगने लग जाएंगे, आप कहेंगे ये शुद्ध भक्त है ये नहीं है, वो है वो नहीं है। अपने ऊपर हमें काम करना है, शुद्ध भक्त नहीं ढूंढने, शुद्ध तो सारे भक्त हैं, जो भक्ति मार्ग में लगा सभी शुद्ध हैं। प्रभुपाद जी ने कहा जो मेरे मेरे मोमेंट में सब शुद्ध हैं, तो शुद्ध भक्त नहीं ढूंढना हमको, सब शुद्ध हैं। अब वो अलग अलग, कोई किसी आश्रम में शुद्ध है, कोई किसी आश्रम में, कोई कोई ग्रस्त आश्रम में शुद्ध है, कोई आदमी संन्यास आश्रम में शुद्ध है। हम ग्रस्त में भी शुद्ध नहीं है, संन्यास भी ले लेंगे तब भी पता नहीं शुद्ध रहेंगे नहीं रहेंगे। तो इसलिए शुद्धि कोई नहीं बता सकता, थर्मामीटर कौन चेक करेगा शुद्ध कौन कितना, मतलब ओवरऑल स्कॉन डिवोटी आप कह रहे हैं, वो तो फिर सभी हो गए ना प्रभुपाद जी के शिष्य अनुगत। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, अच्छा आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा माता जी प्रभु जी से मांगे शादी की सालगिरह पर मुझे साड़ी ला कर दो, नहीं ला के दें तो क्या करेंगी माता जी? हाँ जी, लड़ेंगे, इतना सुनने के बाद लड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, इच्छा जाहिर करेंगे, लड़ेंगे। ये देखिए एक घंटे के लेक्चर का उदाहरण, इसीलिए मन नियंत्रित नहीं होता। तो हम प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि प्लीज मैं अब आपसे लड़ नहीं सकती हूं, मैंने प्रवचन सुन लिया है, कारण में दुख नहीं है लेकिन मन तो कर रहा है, इच्छा है मेरी साड़ी ला दो। तो प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, उनके आगे कहेंगे एक साड़ी तो ला दो। ऐसे ही भक्तिदान महाराज कहते हैं कि जीवन मुक्त होने की अवस्था अगर कोई दे सकता है तो स्वयं कृष्ण ही दे सकते। माधुर कादंबनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, भक्ति महारानी कहती है कि मैं कैसे किसी को प्राप्त होती हूं, पता है आपको? भक्ति महारानी कहती है मैं कैसे किसी को प्राप्त होती हूं। तो भक्ति महारानी के बारे में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, भक्ति महारानी कहती है कि मैं अपनी इच्छा से प्राप्त होती हूं, आई हैव अ फ्री विल। हम सोचें 16 माला का जप, शुद्ध भक्त का संग, भगवत गीता का पाठ और भक्ति प्राप्त, सॉरी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मना कर दिया, नहीं। भक्ति कहती है विधि कोई भी पालन करो लेकिन मेरी इच्छा नहीं होगी ना तो मैं नहीं प्राप्त होंगी। तो भक्ति महारानी अगर प्राप्ति नहीं होगी अपनी इच्छा से तो फिर हम विधि पालन क्यों करें? तो प्रश्न जो उठता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे वर्णन करते हैं कि भक्ति रहती कहां है, कहां रहती है भक्ति? हाँ, कहां रहती है भक्ति? भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में भक्ति रहती है। और अगर भक्त प्रसन्न हो जाएगा तो एक दिन हो सकता है कि वो उसकी भक्ति ट्रांसप्लांट हो जाए आपके हृदय में, बस और कोई तरीका नहीं है। कृष्ण के चरणों में दिए के दिए लगा दो, सोने के दिए जला दो, चांदी के दिए लगा दो, छत्तर लगा दो, नहीं प्रसन्न होंगे। लेकिन एक छोटा सा उनका एक भक्त अगर प्रसन्न हो गया ना आपकी सेवा से तो भक्ति प्राप्त होगी। और एक भक्त अगर रुष्ट हो गया ना, आपने ऐसा कोई काम किया कि जीवन में उसके दरार डाल दी, कृष्ण आपको जीवन में कभी भक्ति नहीं देंगे। और भक्ति महारानी कहती है मेरी अपनी निजी इच्छा है, मैं नहीं आऊंगी, जाओ बिगाड़ना बिगाड़ लो, ओपन चैलेंज, आई गो विद माई फ्री विल, मैं अपनी इच्छा से ही जाती हूँ। तो भक्ति चाहते हैं तो भक्तों की सेवा करनी है, भगवान से गिड़गिड़ाना है, भक्तों से गिड़गिड़ाना है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमें अपनी सेवा में लगाइए। और कोई भी भक्त नाराज हो उसके पांव पकड़ लें और बोले आप हमें क्षमा कर दीजिए, कैसे भी करके बस कोई संसार में हमसे नाराज ना रहे, यही है डाउट का केस भी हो तो भी दंडवती करना आपका आपके पास में एक ही है तरीका, और कुछ नहीं है। आप सोचे मैं भागवतम के श्लोक याद कर लूंगा, कंठस्थ घर में गुनगुनाऊंगा, ब्रह्म संहिता याद कर लूंगा तो एक दिन भक्ति प्रसन्न हो जाएगी ना। ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञानी को नहीं प्राप्त हो रही है, कर्मकांडी को प्राप्त नहीं हो रही है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाओं तो शून्य है। तो इसलिए एक विष्णु चक्री ठाकुर का एक और चीज आपको बता रहा हूं प्रभु जी, फिर समाप्त कर रहा हूं। एक श्लोक में वो कह रहे हैं कि अगर सच में आप भक्ति पद चाहते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक, आज जैसे हमारा टॉपिक है, विषय है मन, तो जैसे अगर आपका बच्चा उदंड हो तो आप क्या करेंगे, बच्चे को उदंडता से संस्कारी बनाने के लिए क्या करेंगे, पनिशमेंट क्या करेंगे? अगर बच्चा उदंड है उसको संस्कारी बनाने के लिए क्या करेंगे, समझाएंगे। समझाने का मतलब शिक्षा देंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अपने मन को क्या दो, शिक्षा दो। और उन्होंने 12 श्लोकों में मना शिक्षा नाम के ग्रंथ की रचना करी। उसके पहले श्लोक पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि बाकी तो प्रभु जी से निपटा देंगे, मैं को ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो पहले श्लोक में वो कह रहे हैं कि मन को किस प्रकार से शिक्षा देनी है, अपने मन की प्रार्थना क्या करनी चाहिए। गुरु गोष्ठे गोष्ठालीशो सुजने भूसुर गणे स्वमंत्रे श्री नामानी व्रज नव युवा द्वंद शरणे सदा दंभित्वा कुरु रतिम अपूर्वम अतिरतम अये स्वांत भ्रतिश्चाटु भैर अभियाचे धृत पदा। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं अभी याचे धृता पदा, अभी याचे याचना करता हूं मेरे मन मेरे वश में हो जा, अभी याचे धृति पदा आपके चरणों को पकड़ करके याचना कर रहा हूं, कृपा कर मेरे वश में हो जाइए, कृष्ण चरणों में लग जाइए। अभी याचे धृति पदा अये संत भ्रतिश चाटु भ्रम, चाटु भ्रम मतलब चाटुरी बातें करके उसको पटाना पड़ेगा, चाटुरिता चाटु चाटुरिता से कि अरे मन कितने अच्छे हो तुम, कृष्ण भक्ति में लग जाओ, ठाकुर जी के चरणों में लग जाओ, सदा वृंदावन की लीला स्मरण करो, भक्तों से प्रेम करो, तुम कहां फंस जाते हो इस संसार के द्वेष द्वंद में, मारपीट कर दो उसके साथ है ऐसी प्यार वाली। और फिर करना क्या है, पहली चीज बोली गुरु, गुरु के अंदर शरणागति कर लो, अपने जीवन में एक गुरु के प्रति शरणागति कर लो और गुरु जो कहे उसके आदेश को अपने जीवन में उतार लो। गोष्ठे और क्या करो कि ऐसी गोष्ठियों में जाओ जहां पर गोलोक धाम की चर्चा हो। तीसरा बोला गोष्ठालयिषु, मतलब गोलोकवासी वृंदावन वासी जिनके हृदय में वृंदावन सदा रहता है उनका संग करो। सुजने, वो जन जो संसार में सुजन, एक है दुर्जन एक है सुजन। दुर्जन कौन, जो गलत काम करे, सुजन जो अच्छे काम करे, ब्राह्मणास। सुजने, सुजनों का संग करो। भूसुर गणे, और उनका भी संग करो जो जाति ब्राह्मण भी हैं, जात से भी भक्ति करते हैं। तो भूसुर गणे, सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, भूसुर गणे उनका भी संग करो। स्वमंत्रे, और अपने जीवन में एक मंत्र प्राप्त करो, स्वमंत्र एक निजी मंत्र होना चाहिए। और श्री नामानी, और हरि नाम प्राप्त करो। व्रज नव युवा द्वंद शरणे, और किसकी शरण में चले जाओ, व्रज नव युवा, व्रज में जो सदा नव यौवन रहते हैं कौन रहते हैं, राधा कृष्ण, उनकी शरण में चले जाओ। शरणे सदा दंभ हितवा, और अपने जीवन से किसको निकाल दो, अहंकार को निकाल दो, बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत ही पैसे वाला हूं, बहुत ही समझदार हूं, मेरे से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, मैं बताऊंगा इस कौन में सही गुरु कौन है, आई विल फाइंड। रति अपूर्वम अतिरतम, और क्या करो, बस प्यार करो भगवान से अतिरतम, और कैसे करो, कैसे करो, अति रतिम अपूर्वम अति रतम, रतिम अपूर्वम ऐसी रति करो, ऐसा प्यार करो, अति रतम, अति रतम मतलब इंटेंस लव, ऐसे होता है ना दीवानगी होती है किसी से, स्कूल कॉलेज में होते हैं ना लड़के लड़के को काट लेते हैं, दीवानगी वाला प्रेम, वो अति रतम, ऐसी अति रति कर दो, अति कर दो रति की प्रेम की कृष्ण से, तब क्या होगा, अये स्वंत वृत्तिश्चाटुर अभी याचे धृता पदा, और इस प्रकार से फिर हम मन की याचना कर सकते। अगर हम ये सारी विधि पालन कर रहे हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं तब आपका क्या होगा, मन खुश होगा, और जब खुश होगा तो आपकी बात मानेगा। आप कहोगे भगवान का भजन कर तो करेगा, जब आप नहीं चाहोगे तो नहीं करेगा। और फिर मन आपका सदा क्या बोलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी।